Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेवमात्मबुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
सच्चिदानन्द भगवान् की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की जय गोपाल कृष्ण भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद का विचार प्रेमपुरी आश्रम के इस मंच से चल रहा है। नचिकेता और उनके पिता वाजस्रवश के बीच संवाद हुआ। नचिकेता को पिता वाजस्रवश ने नचिकेता का ही भाव संकेत विचार प्राप्त करके यमराज के पास जाने की स्वीकृति प्रदान की। पिता की स्वीकृति पाकर के नचिकेता जब यमराज के द्वार पर पहुंचे, सुन रहे थे कल आप लोग कि यमराज वहां पर विद्यमान नहीं थे, गए होंगे कहीं यात्रा करने, यहां स्पष्ट नहीं है कहां गए थे, लेकिन तीन रात्रि तक यमराज से उनका मिलन नहीं हो सका। अन्य परिजनों ने उस बालक का अतिथि के रूप में आए हुए का सम्मान स्वागत करना चाहा, परंतु उस बालक ने नकार दिया। उसका एक ही लक्ष्य था कि मुझे यम से मिलना है, पिताश्री ने मुझे यम के पास में भेजा है, इसलिए तीन रात्रि तक न कुछ खाया न कुछ पिया न विश्राम लिया। ऐसे के ऐसे प्रतीक्षारत खड़े रहे। जब तीन रात्रि के उपरांत यमराज कहीं से लौट करके आए, तब उनके परिजनों ने मंत्रियों ने यमराज को कहा कि एक ब्राह्मण अतिथि द्वार पर तीन रात्रि से भूखा प्यासा और न विश्राम किया है, ऐसे कैसे आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है। ब्राह्मण बालक हैं, अतिथि के रूप में आया हुआ है, इसलिए उस ब्राह्मण बालक को जो कि अतिथि के रूप में आया हुआ है, आप जाइए उनका स्वागत सत्कार करें। अतिथि सत्कार का बड़ा महत्व है, इसलिए क्योंकि अतिथि अग्नि होकर के किसी के घर पर प्रवेश करता है, और यदि उस अग्नि को शांत नहीं किया जाएगा तो जहां अग्नि प्रकट होगी उन्हें जला डालेगी। इसलिए सबसे पहले अग्नि को शांत करने का जो माध्यम है वो होता है जल। यम आप जाएं हरा व्यवस्वतो उदकम, हे सूर्यपुत्र, हे व्यवस्वत, आप जाइए और अतिथि के लिए जल लेकर के जाएं, उस अग्नि को शांत करें। इस प्रकार यमराज के परिजनों ने जब उन्हें कहा, और ये भी कहा कि अतिथि का सत्कार होना बहुत जरूरी है, यदि किसी आतिथेय के यहां पर अतिथि का सत्कार नहीं होता है तो उसको बड़ा अनिष्ट होता है, अप्रत्याशित कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कई सारे किए हुए साधना का फल खो देना पड़ता है। इसलिए आप जाएं और अतिथि का सत्कार करें। यदि किसी द्वार पर अतिथि बिना खाए पिए भूखा प्यासा रह जाए तो इतने सब मिलने वाले फल व्यर्थ हो जाएंगे। जिस मंत्र को आगे यहां पर वर्णन कर रहे हैं अष्टम मंत्र में, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् येतद् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जिसके घर पर ब्राह्मण अतिथि बिना खाए पिए रह जाए उसको जो अनिष्ट होता है उसको इस मंत्र में बताया जा रहा है। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम इष्टा पुत्रे पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते अल्पस्यामेधसः। यदि अतिथि द्वार पर आए हैं और उनका सम्मान नहीं किया गया तो वो आतिथेय व्यक्ति सचमुच में अल्प बुद्धि वाला है, इसीलिए कि वो अतिथि सत्कार के महत्व को समझता ही नहीं है, उसको अल्प बुद्धि करके कहा गया। और ऐसे अल्प बुद्धि के द्वार पर बिना खाए पिए अतिथि रहेगा तो आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम इष्टा पुत्रे पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते, ये सब के सब उसके नष्ट हो जाते हैं। माने जिस किसी पदार्थ के संबंध में व्यक्ति आशा लगाता है, उम्मीद करता है, ये मेरा काम बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मगर यदि अतिथि कहीं भूखा रह गया द्वार पर तो उसका जो पाप होगा, प्राय होगा, उसके प्रणाम स्वरूप केवल आशा आशा रह जाएगी, मगर आशा सफल नहीं होगी, क्योंकि वो पात्र नहीं है। इसलिए आशा जिस पदार्थ की जाती है वो आशा ही रह जाएगी, वो आशित वस्तु उसको प्राप्त नहीं होगी। प्रतीक्षे, और जिसकी प्रतीक्षा करते हैं वो प्रतीक्षित वस्तु भी उसको प्राप्त नहीं होगी। यदि प्राप्त हो भी जाए तो उससे उसको सुख या शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आशा में और प्रतीक्षा में थोड़ा अंतर है। हमारे महाराज श्री जी एक बहुत अच्छा उदाहरण से इसको समझाया करते थे। आशा वो चीज की होती है जिसके संबंध में हमें मालूम भी नहीं है कि मिलेगी, कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। व्यक्ति मन में इच्छा मात्र कर लेता है, और प्रतीक्षा उसकी होती है जिसके संबंध में हमें सूचना है, अमुक वस्तु मिलनी वाली है, अमुक व्यक्ति आने वाला है, उस वस्तु या व्यक्ति के संयोग से सुख नहीं मिलेगा, मगर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आने वाले हैं, वो मिलने वाले हैं। बड़ा एक अच्छा उदाहरण देते थे, एक कोई बालक था अर्धविकसित मस्तिष्क वाला, आधा पागल समझ लीजिए। एक दिन उस अर्ध पागल बच्चे ने देखा कि किसी मैदान में 10-20 कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन बच्चों के पास में वो पागल जाकर के कहने लगा, अरे सुनो, एक खुशखबरी तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा, बोलो क्या? आज हमारे जो नगर सेठ हैं वो मिठाई बांटने वाले हैं, उनका निमंत्रण लेकर के तुम्हारे पास में आया हूं। 2 बजे दिन के नगर सेठ अपने ऑफिस के सामने मिठाई बांटेंगे, तो मिठाई खाने चलोगे? सभी ने कहा, बिल्कुल चलेंगे, नगर सेठ मिठाई खिलाएंगे तो हम क्यों नहीं चलेंगे। और भी बच्चों में उत्साह पैदा हो गया, खूब उछल कूद करने लगे, खेलने लगे। 2 बजते बजते तो सब बच्चे इकट्ठे होकर के नगर सेठ के द्वार पर ऑफिस के सामने, शायद बंबई के ही रहे होंगे इसलिए क्यू में खड़े हो गए, यहां वालों को लाइन में खड़ा होने का बड़ा अभ्यास होता है। वो लाइन लगा करके बच्चे खड़े हो गए, ऑफिस के भीतर से सेठ की नजर गई, देखा ये बच्चे लोग लाइन लगा करके मेरे ऑफिस के सामने खड़े हैं। बाहर निकले, पूछने लगे, भाई क्यों खड़े हो, बोलो। तो बच्चों ने कहा कि आप मिठाई बांटने वाले हैं ना। सेठ ने कहा कि मैंने कब कहा कि मैं मिठाई बांटने वाला हूं? नहीं नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं मिठाई बांटने का, तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं मिठाई बांटूंगा? तो बच्चे कहने लगे, अरे जिसने बोला वो कहां, देखें तो सही। वो बच्चा भी पीछे उसी लाइन में खड़ा था। अन्य बच्चों ने कहा कि वो पीछे जो खड़ा है उसने हमें बोला आज आप मिठाई बांटने वाले हैं। सेठ ने सोचा, मैंने किसी को कहा ही नहीं था कि मिठाई बांटूंगा। उस पीछे खड़े उस बालक को बुलाया, आ इधर आ, मैंने कब कहा कि आज मिठाई बांटूंगा? तो वो कहने लगा कि आपने तो नहीं कहा। तो जब मैंने नहीं कहा कि मिठाई बांटूंगा तो तुमने इन बच्चों को क्यों बोल दिया कि मिठाई बांटूंगा? तो वो कहने लगा कि वो तो मेरे मन में आ गई थी इसलिए बोल दिया, मेरे मन में आ गई थी इसलिए बोल दिया। तो सेठ उसको पूछने लगे कि मैंने तो नहीं कहा। हां, आपने तो नहीं कहा। जब मैंने नहीं कहा तो तुम्हें तो मालूम था कि मिठाई मिलने वाली नहीं है, सेठ ने कहा ही नहीं है। ये अन्य बच्चे तो इसीलिए आए कि तुमने कहा, तो इन्होंने सोचा कि कहा होगा, मगर तुम्हें तो मालूम था आज मिठाई मिलने वाली तो है नहीं, तब फिर तुम इस लाइन में आकर के खड़े क्यों हो गए? ये अन्य तो तुम्हारे निमंत्रण से आए, मगर तुम्हें मालूम था कि हमारा निमंत्रण नहीं है, फिर तुम लाइन में खड़े क्यों हुए? वो कहने लगा, मैंने सोचा जब सब बच्चे लाइन में खड़े हो गए हैं और शायद आपके मन में आ जाए कि जब आई गए हैं तो मिठाई बांट दी जाए, तो ये सब तो मिठाई खा लेते और मैं वंचित रह जाता, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मिठाई मिल ही जाए, इसलिए मैं भी लाइन में आकर के खड़ा हो गया। अब यह आशा और प्रतीक्षा दोनों ही विद्यमान है। अन्य जितने भी बच्चे हैं उनको उसने कहा था कि 2 बजे सेठ जी मिठाई बांटेंगे, तो वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब 2 बजे और कब मिठाई मिले। उनको तो यह था कि मिठाई मिलेगी, तो जिसके लिए निश्चित समय आदि निर्धारित होता है उसकी जब इंतजार की जाती है तो उसको बोलते हैं प्रतीक्षा। और पीछे जो लाइन में खड़ा हुआ बालक था उसको तो मालूम था कि मिठाई मिलेगी नहीं, मगर शायद मिल ही जाए, ये आशा शायद मिल ही जाए। यहां कहते किसी के द्वार पर यदि अतिथि बिना खाए पिए रह जाता है तो उसको आशा और प्रतीक्षा से मिलने वाला जो फल है वो कभी नहीं मिल सकता, प्राप्ति ही नहीं होगी, यह अनिष्ट हो जाएगा। संगतम सुनृताम च, दूसरी बात, यदि कोई वस्तु उसको प्राप्त हो गई, संगत है, उपलब्ध हो चुकी है, परंतु प्राप्त वस्तु भी उस व्यक्ति को शांति नहीं दे सकती जिसके द्वार पर अतिथि बिना खाए पिए रह जाए, इसलिए वो भी फल नष्ट हो जाएगा, जो प्राप्त है उसकी शांति नहीं मिलेगी। सुंदरताम च, मधुर वाणी से जो मिलने वाला सुख है वो भी उसको प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए कि जिस द्वार पर अतिथि अनशनन किए रह गया ऐसी स्थिति में कभी उस व्यक्ति की कीर्ति नहीं हो सकती है, प्रशंसा नहीं हो सकती है, किसी से भी उसको मीठी वाणी सुनने को नहीं मिलेगी, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, वो यही कहेंगे कि बड़ा कंजूस है, बड़ा सूम है, केवल अपना और अपने कुटुंब का ख्याल रखता है, कोई व्यक्ति उसकी प्रशंसा करने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में मधुर भाषा भी उसको सुनने को नहीं मिलेगी। इष्टा पूर्ते पुत्र पशु से सर्वान, कोई व्यक्ति यज्ञ आदि कर्म करते हैं परंतु अतिथि का सत्कार न हुआ तो उसे इष्ट कर्म से, उसे यज्ञ कर्म से जो प्राप्त होने वाला फल है वो भी प्राप्त नहीं होगा, और जो पूर्त कर्म होते हैं उनसे मिलने वाला फल भी प्राप्त नहीं होगा। इष्ट माने यज्ञ कर्म, पूर्त कर्म बोलते हैं जो सामाजिक सत्कर्म होते हैं, कहीं विद्यालय संचालन करना, कहीं हॉस्पिटल संचालन करना, कहीं जल व्यवस्था स्थापित कर देना, समाज के काम में आने वाले वस्तुओं का निर्माण आदि करने की जो सत प्रक्रिया है उसको बोलते हैं पूर्त कर्म। उनसे जो मिलने वाला सुख, प्रशंसा, शांति या ऐश्वर्य आदि है वो भी उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा जिसके यहां पर अतिथि का सत्कार नहीं हो रहा है। इसलिए बड़ा फल बताया गया है अतिथि सत्कार का। कल प्रवचन के बाद एक माताजी, आज है कि नहीं मुझे ख्याल नहीं आ रहा, पूछने लगे कि महाराज शास्त्र में अतिथि सत्कार का बड़ा महत्व बताया जा रहा है लेकिन आज हम लोगों के सामने बड़ी समस्या है, आज समय इतना विलक्षण है कि अतिथि के रूप में कोई बदमाश आकर के घुस गया और अनिष्ट कर गया, कोई बुरा कर गया, तो यहां पर ऐसा कहीं भी शास्त्र में नहीं आ रहा है कि अपरिचित अतिथि हो तभी वो अतिथि है, ऐसा कहीं नहीं आया। अतिथि परिचित भी हो सकता है, यहां जो अतिथि के रूप में आया हुआ है उसको इतना तो अच्छी प्रकार से आतिथेय लोगों ने समझ लिया है कि ब्राह्मण बालक है, अतिथि ब्राह्मण हो गृहान करके बोल रहे हैं। ये ब्राह्मण अतिथि जब घरों में आता है तो वैश्वानर अग्नि होकर के आता है, अर्थात इतनी क्षमता तो आतिथेय में होनी चाहिए कि अतिथि कैसा है, और यदि ये क्षमता हमारे भीतर नहीं है तो कल आप सुन रहे थे अतिथि सत्कार के लिए हर गृहस्थ के यहां पर चार चीज विद्यमान होती ही होती है, तृणानि भूमौ उदकम, वाक् चतुर्थी से सुंदरिता, चार चीज तो हर गृहस्थ के घर में मिलेगी। बैठने के लिए घास फूस का आसन तो मिल ही जाएगा, बैठने के लिए जमीन तो मिल ही जाती है, पीने के लिए पानी तो मिल ही जाएगा, और चौथा है मधुर वाणी। अब यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि यह व्यक्ति विश्वसनीय है कि नहीं, एक संदेह हमारे भीतर में आ जाता है, तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम इतना तो निवेदन कर सकते हैं दरवाजा खोलने से पूर्व कि आप हमें क्षमा कीजिए, इस समय परिवार के अन्य सदस्य कोई घर में नहीं है, आपको हम घर में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते हैं, आप हमें क्षमा करेंगे। मधुर मीठी भाषा में उनको जवाब तो दिया जा सकता है, कम से कम चार में से एक सत्कार तो हो गया, मधुर वाणी से आपने उसको जवाब तो दिया, लेकिन देखते ही कहें नहीं नहीं यहां कोई नहीं है, आप चले जाइए, आपके लिए दरवाजा नहीं खुल सकता है, आपको हम नहीं जानते हैं, यह भी जवाब हो सकता है। और प्रेम से यह भी कह सकते हैं कि आज घर में दूसरे कोई नहीं है, मुझे आप अपरिचित हैं इसलिए दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं है, निवेदन किया जा सकता है। इतना सत्कार तो सबके लिए संभव है परिस्थितियों को देखते हुए, पर शास्त्र कह रहा उस समय की बात जब यदि परिस्थिति अनुकूल हो तब अतिथि का सत्कार अवश्य होना चाहिए। महाभारत काल में एक अतिथि सत्कार का बड़ा अद्भुत उदाहरण सामने ध्यान में आया। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में कार्य समिति का संगठन हुआ। जब कार्य समिति बन रही थी, जुदा जुदा पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे थे, विचार आया कि कोषाध्यक्ष किसको बनाया जाए। तब महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बना दिया जाए। अन्य साथीगण हंसने लगे, महाराज दुर्योधन को कोषाध्यक्ष, वैसे ही इसकी तो आपके प्रति विद्वेष भावना है, और जब आप इसको कोषाध्यक्ष नियुक्त कर देंगे, ऐसी स्थिति में आपके कोष में जितना भी माल होगा सबको वितरित कर देगा, सारा कोष खाली कर देगा, अनाथ बना देगा। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कोई बात नहीं, अगर कोष खाली कर देता है ज्यादा से ज्यादा देगा। बोले बहुत अधिक देगा, जिसको 1101 देना है 11001 से कम नहीं देगा, लुटा देगा सब कुछ। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे वो देने का जो पुण्य फल होगा वो तो हमें ही प्राप्त होने वाला है, कोई बात नहीं, हमारा यज्ञ बहुत अच्छा संपन्न होगा, कोषाध्यक्ष दुर्योधन को ही बनाया जाए। युधिष्ठिर की कोई बात को टाल न सके, कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उधर दुर्योधन को करना वही था जो सब लोगों की अपनी सोच थी। जब यज्ञ समापन पर ऋत्विजों और ब्राह्मणों को दान दिया गया तो सचमुच में जितना देना था उसे कई गुना अधिक देने लगे। दान दक्षिणा देते देते खजाना सचमुच में खाली कर दिया। जितने भी दान दक्षिणा के पात्र अधिकारी थे, इतने दान दक्षिणा प्राप्त किया कि ले जाना मुश्किल हो गया, बड़ी बड़ी गांठड़ियां बंद गई। जंगल के रास्ते से ब्राह्मण लोग दान दक्षिणा लेकर के पैदल जा रहे हैं, इतना वजन है दान दक्षिणा का कि जगह जगह पर विश्राम लेना पड़ता है, पेड़ की छाया में बैठना पड़ता है। जब किसी जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करते हुए आपस में ब्राह्मण लोग बातें कर रहे हैं, वाह वाह महाराज युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ तो आज तक हमने नहीं देखा, इतने दान दक्षिणा अब तक किसी को देते हुए नहीं देखा। इतना दान दक्षिणा दिया है कि जीवन भर की आजीविका हमें प्राप्त हो गई। आज हम मालामाल हो गए। धन्य हो महाराज युधिष्ठिर, ये तो सब आपकी कृपा है। सब प्रशंसा कर रहे थे, उसी वक्त एक नेवला, वो गुजराती में क्या बोलते हैं, नोड़ियो, वो नेवला आता है, उन ब्राह्मणों की बातें सुनने लगा और सुन करके एक मानव की भाषा में नेवला कहने लगा, हे विद्वानों, हे पंडितों, हे भूदेवों, आप किनकी प्रशंसा कर रहे हो? वो कहने लगे कि महाराज युधिष्ठिर के संबंध में कह रहे हैं, बड़े दानवीर हैं, बड़े दानी, ऐसी दक्षिणा दिया, इतना दान दिया,